बीबीसी इंडिया बोल तारीख 18 फरवरी दिन शनिवार। मैं हूं संदीप सोनी। कश्मीर में पत्थरबाजी करने और चरमपंथियों की मदद करने वालों को आतंकवादियों का खुला समर्थक मानेगी सेना और उनके साथ वैसे ही निपटेगी। क्या सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत की इस चेतावनी से कश्मीर की अशांति कम करने में मदद मिलेगी? कश्मीरियों के दिलो दिमाग को जीतने के लिए क्या किया जाना चाहिए? बीबीसी इंडिया बोल में आज चर्चा करेंगे हम इसी विषय पर। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर। कार्यक्रम में शामिल होंगे मेजर जनरल अशोक मेहता और कश्मीर मामलों की जानकार प्रोफेसर राधा कुमार। लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई के पलनी सामी ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। विश्वास मत पर वोटिंग में विपक्ष के विधायकों ने हिस्सा नहीं लिया। पूरा ब्यौरा दे रहे हैं इमरान कुरैशी।
तमिलनाडु की असेंबली में आज हाथापाई हुई, जिसने 1988 के हंगामे की याद दिला दी। उस समय विपक्ष दल की जयललिता की साड़ी खींची गई और आज एम के स्टालिन के शर्ट की बटन टूट गए और स्पीकर धनपाल का टेबल तोड़ा गया। मुख्यमंत्री के विश्वास मत के पक्ष में 122 और विरोध में सिर्फ 11 वोट पड़े। इसके बाद डीएमके ने राज्यपाल विद्यासागर राव से शिकायत की कि विश्वास मत ठीक नहीं हुआ। राज्यपाल क्या निर्णय लेंगे इस पर निर्भर होगा राष्ट्रपति शासन। ऐसे में विश्वास मत जीत कर भी मुख्यमंत्री को राजनीतिक स्थिरता का भरोसा मिला है, ये कहना मुश्किल है।
ये थे इमरान कुरैशी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। गाम्बिया की राजधानी बेंजुल में हजारों लोग नए राष्ट्रपति एडमा बैरो के पदग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए जुटे हैं। बीबीसी के पश्चिम अफ्रीका संवाददाता के मुताबिक क्षेत्रीय प्रमुखों के इंतजार में समारोह की शुरुआत में देरी हो रही है। बैरो ने बीते महीने सेनेगल में एक सादा समारोह में शपथ ली थी। इसके पहले देश के पूर्व शासक याहया जमेह ने दिसंबर में हुए चुनावों के नतीजे को मानने से इनकार कर दिया था। बाद में क्षेत्रीय ताकतों के दखल की चेतावनी के बाद उन्होंने कुर्सी छोड़ दी थी। चीन ने ऐलान किया है कि वो उत्तर कोरिया से कोयले का आयात बंद कर रहा है। उत्तर कोरिया की ओर से हाल में किए गए मिसाइल परीक्षणों के बाद चीन ने यह फैसला उस पर दबाव बनाने के लिए लिया है। विश्लेषकों की राय यह भी है कि हो सकता है कि ये कदम उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के सौतेले भाई की हत्या को लेकर भी उठाया गया हो। उनके सौतेले भाई की हत्या मलेशिया में हुई थी। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा जाता है कि रूस वैश्विक व्यवस्था को कमजोर बना रहा है। म्यूनिख में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन में लावरोव ने कहा कि रूस अमेरिका के साथ व्यावहारिक रिश्ते रखना चाहता है। सम्मेलन में अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा कि रूस को यूक्रेन में की गई कार्रवाई के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रशासन रूस के साथ नए साझा धरातल की तलाश में है। सम्मेलन में माइक पेंस ने यह भी कहा कि अमेरिका यूरोप और नेटो के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा,
We will stand with Europe today and every day because we are bound together by the same noble ideals. Freedom.
हम यूरोप के साथ आज और हमेशा खड़े रहेंगे। हम स्वतंत्रता, लोकतंत्र, न्याय और कानून के शासन जैसे समान विचारों के साथ जुड़े हैं। बीती शताब्दी में हमारा रिश्ता इतना मजबूत रहा है कि अमेरिका आपकी रक्षा के लिए मौजूद रहा है। ये सोचना उल्लेखनीय है कि ये साल पहले विश्व युद्ध में अमरीका के शरीक होने का 100वां साल है। इसके 2 दशक से ज़्यादा वक्त बाद हम तानाशाही को हराने और यूरोप समेत पूरी दुनिया में आज़ादी की मशाल रोशन रखने के लिए एक साथ लड़े, इसलिए किसी को अमेरिका की प्रतिबद्धता में संदेह नहीं होना चाहिए। ये थे अमेरिकी उपराष्ट्रपति के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इराक के पश्चिमी मोसूल में फंसे लोगों के लिए रोज़मर्रा का सामान खत्म हो रहा है। पश्चिमी मोसूल पर इस्लामिक स्टेट समूह का कब्जा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यहां आधे से ज़्यादा दुकानें बंद हैं, पानी की कमी है और बिजली भी बाधित है। सरकार के समर्थन वाली सेना ने इस क्षेत्र की घेरेबंदी की हुई है। सेना ने इस्लामिक स्टेट को बाहर करने के लिए अक्टूबर में अभियान शुरू किया था। तुर्की के प्रधानमंत्री बिनाली इल्द्रिम आज जर्मनी में रहने वाले तुर्की समुदाय के लोगों को संबोधित करने वाले हैं। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल कार्यक्रम में, मेरा नाम है संदीप सोनी। कार्यक्रम का विषय आप जानते हैं, हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं। एक बार फिर बताते हैं आपको, टोल फ्री नंबर 1811-7000 और 1800-102-7001। विषय इस बार निकल कर आया है भारतीय सेना से, जिसका संबंध भारत प्रशासित कश्मीर घाटी से है। सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने कश्मीर में पत्थरबाजी करने वाले और चरमपंथियों की मदद करने वालों को चेतावनी दी है। इस चेतावनी से जुड़े तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने कहा क्या है।
समझाने के रूप में अपनी तरफ से एक हिदायत दे रहा हूं कि अगर आप बाज नहीं आते हैं और अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में बाधा बनते हैं तो हम लोग आपके साथ सख्ती से कार्रवाई करेंगे। अभी तक जिस तरह से हमने पीपल फ्रेंडली ऑपरेशंस किए हैं, हमारा नजरिया यही है कि ये हमारे कुछ ऐसे नौजवान हैं जो कि सोशल मीडिया में प्रोपागेंडा के जरिए हो सकता है इस रुख को अपना रहे हैं, लेकिन अगर उनका इसी तरह से रवैया रहा तो हम सख्ती से पेश आएंगे। देखिए, आर्मी के पास तो सिर्फ बंदूक है, हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम नम्रता के साथ उनके साथ पेश आएं, लेकिन अगर हमारी तरफ हमारे ऑपरेशन में वो बाधा बनेंगे और इससे अगर हमारे जवानों को नुकसान पहुंचेगा तो हम लोग जरूर अपने पास जो हथियार हैं उसका इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाएंगे।
ये थे सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत। कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं प्रोफेसर राधा कुमार, जो कश्मीर मसले पर वार्ताकार की भूमिका निभा चुकी हैं। और इससे पहले कि हम अपने श्रोताओं से बात करें, स्टूडियो में मौजूद मेजर जनरल अशोक मेहता से हम जानना चाहेंगे, ऐसा क्या हुआ, क्या हुआ ऐसा कि सेना प्रमुख को इतने कठोर शब्दों में चेतावनी देनी पड़ी।
मैं समझता हूँ कि जनरल विपिन रावत ने जो बयान दिया उसका कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए। ये कॉन्टेक्स्ट क्या था कि 6 कफ़ने कॉफिन्स कश्मीर से दिल्ली एयरपोर्ट पे लौटी और वो जितने भी कैजुअल्टीज थे, जो मार्टर्स थे, उनको श्रद्धांजलि पेश कर रहे थे। और फिर पत्रकारों ने उनसे सवाल जवाब किया तो उस सवाल जवाब में उन्होंने क्या कहा कि हमारे जो मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं उग्रवादियों, आतंकवादियों के विरुद्ध, उन ऑपरेशंस के टाइम पर सिविलियंस, खासकर जो पॉपुलेटेड एरियाज हैं, वहाँ पर बाधा पड़ता है। लोग पत्थर फेंकते हैं, लोग हथियार को स्नैच करने की कोशिश करते हैं, लाउड स्पीकर पे बातचीत होती है। जो मुद्दा होता है कि मिलिट्री ऑपरेशंस में बाधा पड़े और मिलिट्री ऑपरेशंस कामयाब ना हो। अभी आर्मी की तरफ से क्या बयान आया है कि पिछले साल 2016 में इन ऑपरेशंस में बाधा पड़ने की वजह से 25 उग्रवादी आतंकवादी उस घेरे से निकल पाए हैं और इस घेरे से निकलने की वजह से साथ साथ नुकसान हमारे जवानों का हुआ है। हमारा जो ऑपरेशनल सक्सेस है वो रेशियो 1:10 होता था, अब वो रेशियो 1:5 पे आ गया है, क्योंकि अभी तक मिनिमम कोलैटरल डैमेज, रूल ऑफ लॉ यानी कि ह्यूमन राइट्स को सबको नज़र में रखते हुए कार्रवाई होती है। और इस वजह से अभी आर्मी चीफ ने कहा है कि हमारे जवानों का नुकसान हो रहा है। और हमारे जवानों का नुकसान क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बाधा पड़ रहा है, ये एक बात कही। और दूसरी बात जो उन्होंने ये कही कि जो पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं, जो आईएस के झंडे लहरा रहे हैं, वो एंटी नेशनल है। तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की, ये राजनीति की बात नहीं है
जी,
ये बात प्योरली प्रोफेशनल मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ संबंध रखती
इस
है।
इस विषय के और पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे आगे। पहले कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं अपने पहले श्रोता को 1811-7000 और 1811-7001 पर। आइए सुनते हैं कौन है हमारे आज के पहले श्रोता। जी कौन बोल रहे हैं?
मैं डॉक्टर मनमोहन पावा फतेहबाद हरियाणा से बोल रहा हूँ।
जी डॉक्टर साहब रखें अपनी बात।
सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे अगर हमने इंडियन गवर्नमेंट ने आर्मी डिप्लॉय कर रखी है और वहां पे एंटी नेशनल एक्टिविटीज चल रही है इतने सालों से, तो आर्मी को फ्री हैंड क्यों किया जा रहा? और आर्मी है जो हमारे देश का सबसे बड़ा ओहदा है आर्मी का, अगर वो ऐसी बात कहता है तो इसमें बुरा क्या है?
जी तो आपकी बात कार्यक्रम में शामिल हुई।
उसका उसके जिम्मेवारी है, उसे सिंपल सा बयान दे, उसे राजनीति क्यों की जा रही है?
जी हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा है कि कश्मीर में पत्थरबाजी करने वालों और चरमपंथियों की मदद करने वालों को आतंकवादियों का खुला समर्थक माना जाएगा और सेना उनके साथ वैसे ही निपटेगी। लेकिन क्या इस चेतावनी से कश्मीर की अशांति कम करने में मदद मिलेगी? श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल बीबीसी इंडिया बोल में शामिल हो रहे हैं। आइए सुनते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता क्या कहते हैं इस मामले पर।
ये मेरे ख्याल से नए आए हैं, पूरा इनको इल्म भी नहीं है, इनको इस किस्म के बयानबाजी से जो है जो जख्म जो लगे हैं फौज की वजह से यहाँ के लोगों को खासकर कश्मीर में, वो हरे हो जाते हैं, वो कुरेदे जाते हैं। इनको ये बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये फौज का मसला नहीं है, ये 1947 से मसला लटका हुआ है। आर्मी की ही छवि जो है वो कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, एनडीए में जब यहाँ प्रधानमंत्री के नाते कश्मीर आए, फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी और उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि फौज को ज्यादा देर अगर सिविल कामों में इस्तेमाल करें तो ये हमारा जो इतना बड़ा मशहूर इदारा है उसकी छवि खराब हो जाती है, वो खराब हो जाता है।
ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल को सुन रहे थे आप। जैसा कि उन्होंने जिक्र किया भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कश्मीरियों का दिल जीतने की भरसक कोशिश की लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के आलोचक मानते हैं कि उन्होंने कश्मीरियों से सही मायने में बात करने की कोशिश नहीं की है, ऐसा अक्सर पढ़ने और सुनने में आता है। कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं प्रोफेसर राधा कुमार जो कश्मीर मसले पर वार्ताकार की भूमिका निभा चुकी हैं। प्रोफेसर राधा कुमार, दिल्ली और श्रीनगर, भारत और कश्मीर घाटी, इनके रिश्ते सुधारने की अब तक जितनी कोशिशें हुई हैं उन तमाम कोशिशों के बीच सेना प्रमुख जनरल रावत का बयान जो आया है, उस बयान को आप कैसे देखती हैं?
प्रॉब्लम तो ये है कि पिछले 3 साल से बिल्कुल कोई डायलॉग नहीं चली है जम्मू कश्मीर के लोग और खासकर उसके जो डिसिडेंट हैं या ऑपोजिशन है और भारत सरकार के बीच। और उस हाल में जहां लोगों को लग रहा है कि भारत सरकार अमन बनाना नहीं चाहती है, उस हाल में ये बयान काफी लगता है थोड़ा मिर्च मसाला आग में तेल में आग छिड़काने वाली बात आई है
जी।
मैं मानती हूँ कि जो जनरल मेहता ने कहा है उन्होंने अच्छी तरह से समझाया है कि वो कोई और सर्कमस्टेंस हाल में
जी
बात आई है।
जी प्रोफेसर राधा कुमार, आप कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें। आइए सुनते हैं कश्मीर से एक श्रोता की आवाज हम तक पहुंच रही है।
मैं बशीर अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज, वुमेन्स डिग्री कॉलेज अनंतनाग से बोल रहा हूं। एक्चुअली अगर आपने दोबारा आज का स्टेटमेंट देखा होगा परी उन्हीं का और जो ये इनका होम मिनिस्ट्री है परिकर साहब का, आज तो परी उसने लिखा कि इट वॉज नॉट, मतलब वो धमकी नहीं थी। ठीक, परिकर ने लिखा कि मैं हम आर्मी को हम फुल्ले उनको फ्रीडम है कि वो किस तरह से डील करें, इनको उन्हें कोई पाबंदी नहीं है। मतलब दो व्यूज है या तजाद है उनके दोनों स्टेटमेंट में, आज जो उसने कहा कि इट वॉज नॉट धमकी नहीं थी, और दूसरी तरफ से जो उनका होम मिनिस्टर है वो कह रहे कि नहीं इनको पूरी छूट है। मुझे लगता है ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है जो आज यहाँ पर कश्मीर में जो माहौल है, खासकर जो वो जब वो किसी एनकाउंटर में डील करते हैं मिलिटेंटों के साथ, तो जो वहाँ का पब्लिक रिस्पॉन्स मिलता है किस तरह से वो आर्मी के साथ एंगेज होते हैं, उनको मदद मिलती है मिलिटेंटों को, तो मुझे लगता है ये इसी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है।
अनंतनाग से बशीर अहमद की बात अभी सुन रहे थे आप। लौटेंगे प्रोफेसर राधा कुमार के पास, लेकिन पहले मेजर जनरल अशोक मेहता आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी हमारे एक श्रोता कह रहे थे सेना में फ्रस्ट्रेशन है, किस बात का, और वो इस बात का कि कश्मीर के लोग उनका साथ नहीं देते, क्या वाकई ऐसा है?
मैं फ्रस्ट्रेशन नहीं कहूँगा इसको, ताज्जुब जरूर है कि भारतीय सेना 70 साल से जम्मू और कश्मीर में रह चुकी है। अभी हाल में जब वहाँ पर बाढ़ आए थे, फ्लड्स आए थे, या जब कभी कोई प्रॉब्लम जम्मू और कश्मीर में आती है तो पहला हाथ जो आगे बढ़ता है वो फौज का हाथ आगे बढ़ता है। लोग भूले नहीं हैं जम्मू और कश्मीर के कि जब आपत्ति आती है तो फौज का हाथ पहले आता है। मैं समझता हूँ कि फौज का काम क्या होता है ऐसी समस्या में, कि ऐसी हालत पैदा की जाए ज़मीन पर जिससे राजनीतिक उसका सलूशन निकल सके, टू क्रिएट कंडीशंस दैट विल फैसिलिटेट ए पॉलिटिकल सलूशन। ये मामला जैसे राधा कुमार बात कर रही थी कि कोई डायलॉग ही नहीं हो रहा, अब आप फौज को 70 साल तक एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम को मिलिट्री के ज़रिए अगर आप काम करेंगे तो आर्मी चीफ अपने आदमियों को बचाने की तो कोशिश करेगा। हम लोगों ने, फौज ने, वी हैव लॉस्ट मोर पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर Than in all the wars that we have fought.
जी, इससे पहले कि हम 1811 7000 और 1802 7001 पर अगले श्रोता से बात करें, प्रोफेसर राधा कुमार से हम दोबारा बात करेंगे। प्रोफेसर राधा कुमार, ये आपसे जानना चाहेंगे कि कश्मीर के लोग यदि सेना का साथ नहीं देते हैं तो इसके पीछे वजह आखिर क्या है, क्यों सेना कश्मीरियों का भरोसा अब तक नहीं जीत पाई है?
देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारे नेताओं को शर्म आनी चाहिए। 70 साल से उन्होंने फौज के सर पे ये प्रॉब्लम बिठाया हुआ है, और जब उनको मौके मिले हैं, और ये सिर्फ एक मौका ही नहीं पर बीसियों मौके मिले हैं जब वो अमन की बात आगे बढ़ा सकते थे, जब वो एक राजनीतिक हल निकाल सकते थे, और उस वक्त एक न एक वजह पर हर वजह में एक बात ही निकलती है कि इन दम नहीं है। हर आदमी को अपन बनाने के लिए दम दिखाना पड़ता है। अब अगर राजनीतिक दम नहीं है तो आखिर में फौज क्या कर पाएगी?
राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात कर रही है प्रोफेसर राधा कुमार, आएंगे आपके पास दोबारा, जुड़ेंगे आपसे, बात आगे जारी रखेंगे, लेकिन आइए पहले सुनते हैं टेलीफोन के जरिए कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं अगले श्रोता कौन है। लेकिन उससे पहले हमें ये भूलना नहीं है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। सेना प्रमुख ने कहा है कि कश्मीर में पत्थरबाजी करने और चरमपंथियों को मदद करने वालों को आतंकवादियों का खुला समर्थक माना जाएगा और उनके साथ वैसे ही निपटा जाएगा। क्या सेना प्रमुख के इस बयान को, इस चेतावनी को कश्मीर की अशांति बढ़ाने वाला माना जाए, और कैसे कश्मीरियों के दिलो दिमाग को जीता जाए, हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं आज। आइए सीधे चलते हैं अगले श्रोता के पास।
जी नमस्ते।
जी कौन नमस्ते। कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं?
जी मेरा नाम सुमित है, सुमित शाह, मैं चौक बाजार चिंसुरा हुगली से बोल रहा हूं।
रखें अपनी बात।
जी मेरे ख्याल से तो आर्मी जनरल ने बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि देखिए बात यह है कि आर्मी का जो काम होता है, आर्मी सिक्योरिटी फोर्सेस का जो काम होता है, उसी के हिसाब से तो उनको जो है अपना जो है पक्ष रखना होता है ना। वो तो कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी नहीं है, कोई राजनेता तो नहीं है, उनका नाम, उनका काम कोई राजनीतिक सॉल्यूशन निकालना नहीं है। वहाँ पर उनका काम है शांति एवं व्यवस्था जो है कायम करना। यदि उपद्रवी जो है बार बार इस प्रकार से जो है लॉ उल्लंघन करेंगे, कानून का उल्लंघन करेंगे, इस प्रकार से सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो है पथराव करेंगे और इस प्रकार से उनको जो है बाधित करेंगे, तो इसके अलावा तो और कोई चारा रह नहीं जाएगा।
जी सुमित, कार्यक्रम में आपकी बात शामिल हुई, बहुत शुक्रिया हमें टेलीफोन करने के लिए। आइए देखते हैं, सुनते हैं अगले श्रोता कौन है हमारे साथ।
हेलो
जी, कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
जी मैं दुर्गेश कुमार गुप्ता बनारस से बोल रहा हूँ सर।
दुर्गेश जी रखें अपनी बात।
जी मैं रावत साहब के बयान से सर पूरी तरह सहमत हूँ, उनका जो बयान है वो सही है। यद्यपि इससे कश्मीर में अशांति का माहौल तो पैदा होगा, लेकिन अगर सेना ऐसा कदम उठाती है तो ये ठीक है, सेना का जो कदम होगा वो सही होगा, क्योंकि जो सैनिक हमारे शहीद हो रहे हैं आतंकी गतिविधियों की वजह से, और जो वहाँ के कुछ युवा जो सहयोग कर रहे हैं, ये काफी सर मतलब अच्छी बात नहीं है। इसके लिए मतलब सेना को पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। और मैं अपनी बात एक प्रश्न के साथ यहाँ रखना चाहूंगा, और वो मेरा अंतिम बात होगा कि टेररिस्ट की मदद करने वाला टेररिस्ट कैसे नहीं हो सकता है या कैसे नहीं होगा?
लेकिन ये कौन तय करेगा कि कौन चरमपंथी है कौन नहीं? आइए चलते हैं अगले श्रोता के पास। हेलो।
हेलो,
कौन साहब बोल रहे हैं?
शैलेश पांडे बात कर रहा हूँ।
पांडे जी कहाँ से बोल रहे हैं?
मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ।
पांडे जी कार्यक्रम में स्वागत है आपका, रखें अपनी बात।
जी बिल्कुल, मैं शैलेश पांडे बोल रहा हूँ। मेरा कहना यही है कि जो माननीय सेना प्रमुख ने कश्मीर के बारे में अपनी राय दी वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर होता है यदि आदमी सही से मान जाए तो सही है, नहीं तो उसके लिए थोड़ी सी कड़ी कार्रवाई करनी ही पड़ती है। और जहाँ तक कश्मीर का बात है तो उन्होंने जो राय व्यक्त करी है तो जो लोग आतंकवादियों का सपोर्ट करेंगे उन्हीं के लिए उन्होंने जो अपनी राय दी है उनके लिए दी है, ना कि आम जनता के लिए दी है। जो भी शांति चाहते हैं या सही से रहे हैं उनके लिए तो कोई, जो हमारे सेना प्रमुख ने बयान उनके बारे में कोई बयान नहीं दिया है या उनके विरोध में नहीं दिया है। जो लोग हिंसा का समर्थन करेंगे या आतंकवादियों का समर्थन करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
शैलेश पांडे जी आपकी बात कार्यक्रम में हम तक पहुंची, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और कार्यक्रम में हम आपको बता दें हमारे साथ बने हुए हैं मेजर जनरल अशोक मेहता और कश्मीर मामलों की जानकार प्रोफेसर राधा कुमार। अगला सवाल मेरा आप दोनों से है, प्रोफेसर राधा कुमार और मेजर जनरल अशोक मेहता साहब, कहाँ दिक्कत है कि इतने सालों के प्रयास के बावजूद, जैसा कि सरकार दावा करती है, खाई पट नहीं पाई है अभी तक, खाई बरकरार है?
देखिए प्रॉब्लम यह है कि मिलिट्री काउंटर इंसर्जेंसी या काउंटर टेररिज्म ऐसी हालत में, ये प्रॉक्सी वॉर चल रहा है जम्मू और कश्मीर में, ये एक वॉर लाइक सिचुएशन है, लेकिन इसको जीतने, इसमें जीतने के लिए हमको जो वहाँ के आवाम है, जो लोकल, ये कैच 22 है कि उनकी सहायता के बिना जो लोकल पॉपुलेशन, जो आवाम है, ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। अगर उनके बिना ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती तो अगर उनके विरुद्ध बंदूक हम दिखाएंगे और उसकी धमकी देंगे तो आपके सवाल का जवाब ये है कि स्थिति खराब होती जाएगी। तो इसलिए हमें फौरन राजनीतिक वार्तालाप करनी चाहिए, और जब तक हम वो बातचीत नहीं करेंगे ये मामला ढहलता और ख़राब होता जाएगा। और ये जो हालत, जिस हालत में हम पहुँचे हैं, इस जगह पहुँचने के लिए हमको धन्यवाद करना चाहिए हमारे राजनीतिक नेताओं को, उन्होंने इस सिचुएशन को इस हालत में कर दिया।
लेकिन जिस के लिए आप धन्यवाद कर रहे हैं वो हालात कितने नाजुक हैं इसका एहसास तब होता है जब आप कश्मीर घाटी पहुंचते हैं। प्रोफेसर राधा कुमार आप सुन रही थीं, प्रोफेसर राधा कुमार आप सुन पा रही हैं हमें?
जी बिल्कुल
जी। मेजर जनरल अशोक मेहता साहब जो कह रहे थे बात, फिर वही सवाल घूम फिर के बात वही आती है कि कहाँ किस तरह की खाई रह जाती है जो पार्टी नहीं जाती, जो भरी नहीं जाती और मतभेद मनभेद बने रह जाते हैं?
मैं देखिए मैं सोच रही थी कि कितने मौके हुए हैं। 1991 92 में मौका आया, 94 में आया, 98 में आया, 2000 में आया, फिर 2002 से 5 काफी बेहतर चला, उसके बाद 2005-06 भी चला, 7-08 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई उस वक्त भी लोग की काफी आशाएं थी कि और अमन की बात आगे बढ़ेगी और धीरे धीरे कुछ हल निकलेगा जो लास्टिंग होगा। अब हर बार ये टूटा है, ये बात नहीं है कि सिर्फ हमारे नेताओं की प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में जो हालात वो बिल्कुल दूसरी तरफ जा रहे थे। तो भारत पाकिस्तान की जो बात नहीं हो पाई, जो नहीं चल पाई अमन की तरफ, उसका भी बहुत ही बुरा असर पड़ा कश्मीर पर। ये सब मानते हुए मैं कहूंगी कि पिछले 3 साल अगर हम देखें तो हमारे जो सबसे बड़े नेता हैं उनकी मुंह से हमने कोई मरम पट्टी की आवाज नहीं सुनी। छोड़े चलिए आप राजनीतिक हल पे अभी चर्चा करने को तैयार नहीं है, मरम पट्टी तो लगा सकते हैं
जी,
जो 2005 तक की बात थी। अब मरहम पट्टी के अलावा हमने जो देखा है उल्टा देखा है
जी।
कि हर बार जो बात निकलती है वो और गुस्सा करने वाली बात निकलती है।
जी प्रोफेसर राधा कुमार, बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। और सुनते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल इस बारे में, इस पूरी समस्या के बारे में क्या राय रख रहे हैं।
सबसे बड़ा दुख जो इनको है लोगों को वो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट का है। हमारी सिविल सोसाइटी ने, हमारे उस वक्त के मिनिस्टर्स ने जिसमें चिदम्बरम जी हैं, मनमोहन सिंह जी हैं और दीगर वजीर हैं, उन्होंने इसको ख़त्म करने की बात की है। ये खामखा रखा जा रहा है, इसका कोई कोई ये बहुत बड़ी एक एक एक, एक जो पीड़न है, एक एक दुख है लोगों में, इसको ख़त्म करो। और जो जो आपकी इस वक्त जो पोटा लगा हुआ है उसको ख़त्म करो। ये काले कवानीन जो हैं जिससे हमारे सुरक्षा कर्मियों को बहाना मिलता है एक्सेसेस करने का, क्योंकि उनको अदालती जिस जुडिशल जो है स्क्रूटनी की छूट मिल जाती है। तो मेरी गुजारिश है ये तो हो सकता है। और अमी जेटली जो फिर वाजपेयी इसने कहा था, वाजपेयी जी ने फारूक साहब को 2000 में उन्होंने जेटली जी को हवाले किया कि बताओ क्या करें, जेटली जी और भूल गए, नहीं तो मामला लटकता रहेगा। ये फजूल की बातें जो अपने डिफेंस मिनिस्टर भी कहते हैं, हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक की तो उससे जो मिलिटेंसी खत्म हो गई, पत्थरबाजी खत्म हो गई, वो दिल्ली में बैठ के ये फरमान जारी करते हैं और हालात आप देखते हैं, आज देखिए कहाँ पहुंचा है।
जी ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल श्रीनगर से। चलते चलते कुछ कमेंट लेते चलते हैं सोशल मीडिया से। सद्दाम इद्रीसी लिखते हैं कि सेना प्रमुख के इस बयान से कश्मीर में और अशांति फैलेगी, क्योंकि कश्मीरी नागरिक गोलियां खाकर भी चुप नहीं बैठेंगे, अगर उन्हें गोलियों से डर होता तो अब तक कश्मीर का मुद्दा हल हो गया होता। इसी तरह तंजील खान लिखते हैं कि सेना प्रमुख ये बयान किसी और राज्य के लिए भी दे सकते हैं क्या? नहीं। एक और हैं आबिद अली सैयद, वो लिखते हैं कि सख्ती से निपटने से कुछ बात बनती तो जनरल डायर ने जो सख्ती दिखाई थी उससे तो पूरा भारत ही शांत हो जाना चाहिए था। ये कुछ टिप्पणियां थी सोशल मीडिया पर बीबीसी हिंदी के फेसबुक पन्ने से जो हम आपको बता रहे थे। अब हम कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मेजर जनरल अशोक मेहता और कश्मीर मामलों की जानकार प्रोफेसर राधा कुमार का। इंडिया बोल में आज इतना ही। श्रोताओं को हमसे और हमें श्रोताओं से जोड़ रहे थे राजेश चौहान, स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे। उन सभी श्रोताओं से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहेंगे जो इंडिया बोल में अपनी बात कहना चाहते थे लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अगले शनिवार फिर एक ज्वलंत विषय पर बीबीसी इंडिया बोल के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को विदा देंगे, लेकिन पहले सुनेंगे चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर वात्सल्य राय से।
बीबीसी समाचार। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ईके पलनीसामी ने विधानसभा में विश्वासमत हासिल कर लिया है। चीन ने ऐलान किया है कि वो उत्तर कोरिया से कोयले का आयात बंद कर रहा है। उत्तर कोरिया की ओर से हाल में किए गए मिसाइल परीक्षणों के बाद चीन ने यह फैसला उस पर दबाव बनाने के लिए किया है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा जाता है कि रूस वैश्विक व्यवस्था को कमजोर कर रहा है। बीबीसी समाचार।
इंडिया बोल में आज इतना ही। हमारा अगला प्रसारण नमस्कार भारत सुबह 6:30 बजे। तब तक bbchindi.com है आपके पास पल पल बदलती खबरों के लिए, आइए हमारी वेबसाइट पर। बहुत आसान है, सिर्फ आपको निकालना है अपनी जेब से अपना मोबाइल। धन्यवाद, नमस्कार।